आज की कहानी है समझौता, जिसे लिखा है ऋषा गुप्ता ने। चलिए कहानी शुरू करें। समझौता। अपने 15 दिन की बच्चे को दूध पिलाकर छवि उसे लोरी गा सुला रही थी। कुछ ही देर में उसकी बच्ची नींद के आगोश में चली गई। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। छवि ने उसके माथे पर धीरे से प्यार किया, फिर बिस्तर पर बिखरे कपड़े समेटने लगी। तभी कुछ देर पहले चिराग से हुई खटपट फिर से उसके दिमाग को झंझोड़ने लगी। ऐसा भी क्या कहा, उसने यही कहा ना कि अपनी बच्ची के लिए काया रख लेते हैं, 3-4 महीने के बाद उसे ऑफिस जाना ही होगा। इतना सुन चिराग बोला, छवि देखो मैं यह नहीं कह रहा कि तुम जॉब छोड़ दो, पर अभी हमारी बेटी छोटी है, जो नौकरों के भरोसे छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। आजकल आए दिन कितना कुछ सुनने को मिलता है, ऑफिस में बात करके तो देखो। छवि अपनी बेटी की नेपी पहनाते हुए बोली, चिराग तुम अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ देते, हमेशा समझौता मैं ही क्यों करूं। चिराग नेपी बदलने में छवि की मदद करता हुआ बोला, छवि तुम भी तो जानती हो कि इतने छोटे बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत एक माँ की होती है, समझने की कोशिश करो। आगे अगर भविष्य में ज़रूरत हुई तो मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। पर छवि बात मानने को तैयार नहीं थी। बस इसी बात पर दोनों में खींचातानी हो गई। इधर वह अपने ख्यालों में खोई बिस्तर समेट रही थी कि तभी उसका 6 वर्षीय बेटा कियान चुपके से आकर उसके गले लग गया। छवि अचरज से बोली, अरे वाह आज तो तुम बिल्कुल चुपचाप आ गए, वरना तुम तो इतना शोर करते हो कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि कियान स्कूल से आ गया है। कियान ने छवि के मुंह पर उंगली रख उसको धीरे से बोलने को कहा और उसकी उंगली पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया और धीरे से बोला, मम्मी मेरी छोटी बहन सो रही है ना, इसलिए मैंने शोर नहीं किया, नहीं तो वो जाग जाएगी। छवि कियान की बात सुन हंसने लगी। तभी कियान उसे अपने कमरे में ले गया और बोला, देखो मम्मी मैंने अपनी छोटी बहन के लिए जगह कर दी है, अब से यह उसका भी कमरा है। छवि हैरान हो गई, पर बेटा तुम तो अपने कमरे में किसी को आने ही नहीं देते, और तुम कहते थे ना कि ये कमरा तो मेरे लिए भी छोटा पड़ता है, फिर तुम इतनी छोटी बहन के लिए कैसे जगह कर सकते हो। कियान टॉय कार से खेलता हुआ बोला, मम्मी अब मेरी बहन आ गई है, मैं उसका बिग ब्रदर हूँ, तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, अपनी बहन के लिए क्या थोड़ा कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। अपनी बेटी के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुन छवि ने उसको प्यार से गले लगा लिया। तभी जैसे उसे कुछ याद आया, वो कियान से बोली, कियान बेटा तुम यूनिफॉर्म बदलो, मुझे एक ज़रूरी मेल करना है, और उसने लैपटॉप खोल कर ऑफिस में मेल कर दी। सर मैं साल भर ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मेरी जगह कुछ और एडजस्टमेंट कर लीजिए, और उसने लैपटॉप बंद कर कियान को अपने पास बुलाया और उसकी टी शर्ट ठीक करते हुए बोली, थैंक यू बेटा। कियान रिमोट से टीवी ऑन करता हुआ बोला, थैंक यू मम्मी क्यों। छवि रसोई में उसका खाना लगाती बोली, बेटा आज तुमने इतने छोटे होते हुए मुझे एहसास कराया है कि कुछ समझौते हमारे हित के लिए होते हैं, कभी उन्हें अपने अहम के आड़े नहीं आने देना चाहिए। कियान के लिए प्लेट में चावल डालती वो बोली, क्यों बेटा आज स्कूल में मैम ने क्या पढ़ाया, फिर क्यों तो अब अपने कार्टून को देखने में व्यस्त हो गया था। छवि उसकी थाली लेकर आ गई। थोड़ी देर पहले ही उसकी कसमकस उसके छोटे से बेटे ने कितनी आसानी से सुलझा दी थी। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी, मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाग्य की डोर, जिसे लिखा है नवतेज सिंह ने। यह कहानी पंजाबी में है, इसे हिंदी में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि गांव के लोग प्रतापी साधु का इंतजार कर रहे हैं। तेजू को साधु पर बहुत भरोसा है। गांव में पशुओं की सेहत बहुत खराब होती जा रही है। तेजू मजवी को बिल्लो अपने पशु से प्यार बहुत है, उसे अपना कर्जा भी उतारना है। साधु के आने पर पीपा बजाकर सबको बताया जाता है कि साधु आ गए हैं। लोगों में वहम का होना, मानसिकता, अंधविश्वास, जादू टोना पर विश्वास करना कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करें। भाग्य की डोर। सारा गांव प्रतापी साधु के इंतजार में था। कभी भी उनके गांव में अपने चरण डालता, जब भी आता तो पशुओं का टूना जादू करता। तेजू मजबी की तो बुखार चढ़ा था, जैसे भाग्य की डोर उस साधु के हाथ में है। पीले रंग की एल गुड़िया सजाई गई है। कोई घुटने टेक कर अपना काम कर रहा था, कोई अपने धान के खेत से घास फूस निकाल रहा था, पर तेजू के पास तो केवल एक उसकी बिल्लो ही थी। गांव में हर दिन कुछ जानवर अपने कान ढीले छोड़ने लगे, वह खाना भी छोड़ देते, उनकी आंखों में गिद्ध भी आ जाती। फिर कुछ दिनों बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगती और उनकी सांस अटकने लगती। लोगों ने उन्हें बचाने के बहुत यत्न किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के कई जानवर मर गए थे, कुछ जानवर बीमार पड़े थे। यह बड़ा आघात था कि स्वस्थ और अच्छे जानवर इस तरह मर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या त्रासदी आ गई है। गांव के कुछ लोगों ने कहा, साधु को छोड़ो, इस बार ब्लॉक में दरखास्त देके सभी पशुओं को टीके लगवा लेते हैं। पर बुजुर्ग लोगों ने यह सलाह नहीं मानी। टीके से कुछ नहीं संवरता, सरकारी कामों की सुस्ता चाल का तो पता ही है सबको। पहले सारे गांव से दस्तखत कराएंगे, फिर दरखास्त देख देख के घूमेंगे। कितने दिन दरखास्त दफ्तरों में चक्कर काटती रहेगी, फिर पिछले साल की तरह डंगर के डॉक्टर बताएंगे कि दवाएं तो है ही नहीं। आखिर जिन टीकों के लिए आवाज उठाई गई थी वो भी साधु की तो शरण में गए। बहुत ही प्रतापी और विख्यात साधु है वह। अब तो बहुत बुढ़ा हो गया है, पर जब वह जवान था तो बताते हैं कि एक बार उसके डेरे पर एक स्त्री आई थी तो उसे लोगों ने बदनाम किया था। साधु ने जब यह अनहोनी सुनी तो उसने अपनी इंद्री काट ली। आज गांव के प्रमुख लोग उस साधु को लेने जा रहे हैं। पहले लोग अपने पशुओं को ऐसे ही चरने के लिए छोड़ देते थे, पर कुछ दिनों से लोगों से ऐसा नहीं हो रहा था। तेजू मंजूबी ने तो पहले भी कभी अपनी छोटी को गाली नहीं निकाली थी। उसने छोटी को धीरे धीरे बड़ा किया था। जब वह रोटी खाता तो वह चबूतरे पर आ जाती थी। उसने उसे बुरकियाँ, टुकड़े टुकड़े रोटी खिलाकर बेटे जैसे पाला था। बिल्लो जहाँ भी होती उसे देखकर लौटने लग जाती, जैसे बिल्लो को पता था कि चेते साथ तेजू को अपना कर्ज उतारने के लिए तंग करता है। बिल्लो 3.5 वर्षों में ही गर्भ धारण करने लगी। चेते सा ने बहुत जोर लगाया कि तेजो उसे बिल्लो दे दे, चाहे वह सारे कर्जों को माफ करवा ले। पर तेजो तो जब उसके बच्चे होते तो वह जो ले 200-300 कोलों पेशगी ले लेता और एक किस्त चेते सा को दे देता। वह सोचता था कि ऐसे ही वह कर्जा उतार लेगा। पर अब गांव में किसी की कोई कट्टी मर गई और कोई इलाज नहीं था। तेजू को बहुत डर लगता था, पर उसे प्रतापी साधु पर बड़ा विश्वास भी था। साधु को लेने गए लोग वापस लौट आए। एक साधु उनके साथ आया, पर यह प्रतापी साधु नहीं था, उसका चेला था। प्रतापी साधु को कोई और दूसरे गांव में ले गया था। गांव में टल्ली खड़काकर सबको आगाह किया गया कि साधु आ गए हैं। भाइयों, जानवरों को स्वस्थ करने के लिए साधु आ गए हैं। पंचायत का हुक्म है कि रात को 10 बजे से लेकर सवेरे जब तक सारे पशुओं का रास्ता पार नहीं कर देते तब तक कोई व्यक्ति दिए नहीं जलाएगा, ना ही कोई आग जलाएगा, ना कोई कुएं से पानी निकालेगा, ना ही कोई नल चलाएगा, ना भैंस धोएगा। गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा वह गांव का देनदार होगा। मुंह काला करके उसे गधे पर चढ़ाया जाएगा, 50 रुपये दंड भी लिया जाएगा। साधु ने चेते शाह की दुकान से आधा गज कपड़ा, नारियल और सामग्री को ले लिए और चेते शाह ने 2 किलो देसी घी का इंतजाम भी करा दिया। 25 रुपये का यह सामान था, पर चेते शाह ने यह सारा सामान उधार में दिया था। सुबह साधु के पास बहुत सारी कनक जमा हो जाती थी। साधु ने एक कोरा नया घड़ा मंगवाया तो उसके नीचे एक छेद कर दिया, फिर एक बर्तन में जल और दूध डाला। साधु ने बर्तन और घड़ा पकड़ने के लिए 4-5 नौजवानों को लिया। साधु पवित्र जल और दूध बर्तन से निकाल कर घड़े में डाल देता। यह घड़ा गांव से बाहर करके उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा। इस रात को बाहर किसी को नहीं जाना था, ना बाहर से ही कोई अंदर आएगा। उसके अंदर जो भी भूत चुड़ैल थे उन्हें साधु ने अपने टूने टोटके से सुबह तक सबको भस्म कर देना था। इससे जो कोई व्यक्ति कानून उल्लंघन करेगा तो भूत प्रेत उसके साथ वापस आ जाएगा। साधु ने हवन करना शुरू किया। वह मंत्र पढ़ता और अग्नि में घी डालता। गांव के लोग उसके पास बैठकर जापजी साहब का पाठ लगातार करते रहे थे। पहलवान मर्दों की 5 टोलियां बनाई गई थी। सब ने हाथों में हवन सामग्री रखने वाला बर्तन दे दिया था। साधु ने उसमें कुछ अंगियारे उसमें डाल दिए थे और उसके कुछ सामग्री डाल दी थी। यह महकती सामग्री लेकर अलग अलग दिशा में वो चले गए थे। सबके दरवाजे पहले से ही खुले थे, कुछ बंद थे। उन्हें खुलाकर सभी को सामग्री देते और यह भी ध्यान रखते कि कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। सभी ने वसीरे चमार के ऊपर कड़ा पहरा रखने के लिए कहा था। जब धूनी देने वाले चमार के घर पहुंचे तो वह जागा ही हुआ था। उसके घर के दरवाजे भी खुले थे। वह बोला, भाइयों आप लोग जब भी आकर अपना सामान निकाल लो। उधर हवन और पाठ सारी रात चलता रहा और इधर टोलियां सारी रात गांवों के घर घर में घूमती रहीं। सुबह होने तक दोनों काम हो गए थे। सुबह सुबह साधु ने अरदास की और सारे गांव के पशुओं को भेजने का समय हो गया। साधु के सामने दूध वाले जल से भरा एक कड़ा पड़ा हुआ था। यहीं से सबू पशुओं को पार होना था। रस्सी बांधी गई थी, एक एक करके पशुओं को निकलना था, पर हर किसी को हड़बड़ थी। सब यही चाहते थे कि पहले उसका पशु निकल जाए और वह फ्री हो जाए, पर जल्दबाजी में किसी का पशु मिल नहीं रहा था। किसी की कट्टी गुम हो गई थी। हड़कंप मच गई, चारों तरफ धूल उड़ने लगी। हर परिवार का एक व्यक्ति कुछ सामान और गेहूं लेकर आया था। जब साधु के पास पशु पहुंचते तो वह उन पर जल छिड़कता, लोटे से जल देता और लाई हुई कनक एक ढेरी में डाल देते। यह गेहूं की ढेरी बढ़ती ही जा रही थी। जब सभी पशु चले गए तब कहीं जाकर घर में काम शुरू हुआ। आग जलाई गई। अभी तक तो साधु के पास ही मेला लगा हुआ था, बाकी सारा गांव सुनसान पड़ा था। साधु के पास करीब 30 मन गेहूं इकट्ठी हो गई। करीब 2 मन उसने चेते साहब को लौटा दी, जो सामान उसने चेते साहब से उधार दिया था। बाकी गेहूं ले जाने के लिए उसने रेड़ी मंगवाई और उसमें गेहूं डालकर वह अपने डेरे चला गया। एक टोली नामे महिर को पकड़ कर लाई। उस पर कानून उल्लंघन का दोष था। अभी सारे पशु पार नहीं हुए थे और उसने स्नान कर लिया था। साधु से पूछ लो। साधु तो चला गया, और साधु को क्या पता, यहाँ से तो हजारों लोग हजारों पशु पार हुए हैं, साधु कैसे पहचानेगा नामे को। कोई जवाब नहीं सूझा। एक गधा लाया गया और घर से तवे की स्याही लाई गई और गधे पर बिठा कर उसे घुमाया गया। इतने में एक और टोली आ गई, कहने लगी, गधे को यहीं रखो, एक और मुर्गा फंसा है। राम सुंदर ने रात में दिया जलाया था, दिया जा बिजली का लट्टू। राम सुंदर गाँव का दामाद था और उसने यहाँ किराने की दुकान खोल रखी थी। वह बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा था, कांग्रेस पार्टी को मानने वाला था। उसे लोग सरकारी पिट्ठू समझते थे और उससे खार खाते थे। वह सफ़ेद खद्दर के कपड़े पहनकर जा रहा था तो टोली ने उसे पकड़ लिया। राम सुंदर शर्मिंदा होकर सबसे कह रहा था, मुझे गधे पर मत बिठाओ और जो भी दंड देना है दे दो। और वह कांपते हाथों से 10-10 के 5 नोट गिनने लगा। क्या तुम्हारे में कोई लाल लगे हैं, तुम्हें गधे पे क्यों ना चढ़ाया जाए। आसपास भी भीड़ इकट्ठी हो गई। जिनके पशु मर गए थे उन्हें बहुत रोष था। अंधेर आ गया, गांव का कोई रूल ही नहीं रहा, मर्यादा ही खत्म हो गई है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। ब्राह्मणों और महरियों अंत ने अंत चुकी हुई है। हजारों रुपए की भैंसें मर गई हैं, पर इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना इनके कानों में कोई जूं रेखती है। मुठीर बाबा कभी गधों को, कभी राम सुंदर को खुश खुश करता, भीड़ से ही कोई धक्का मार देता। दो बुजुर्गों ने कहा, लड़को यह गांव का दामाद है, इसे माफ कर दो। अच्छा, गांव का दामाद? दामाद होगा अपने ससुर का, हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ, साला लग सकता है, 50 की जगह 60 रुपए ले लो, पर मुझे गधे पर मत बिठाओ। तो नामा मनुष्य नहीं है क्या जिसे गधे पर चढ़ाया गया है? हमारे लिए सब बराबर है, कामरेड बोला। यह कभी कामरेड की पार्टी में था, एक बार किसान मोर्चा पार्टी से जेल भी हो आया था, फिर पाकिस्तान बनने के समय गांव के मुसलमानों का माल लूटने के कारण कामरेड से निकाल दिया गया, पर गांव वाले उसे कामरेड ही बुलाते थे। अच्छा, ऐसा करते हैं, नामे से ही पूछ लेते हैं। नामे को बुलाया गया, उसके मुंह से अभी पूरी काली कुतरी नहीं थी, लोग हंसने लगे। नामा गुस्से से बोला, भाइयों, अगर मेरी इज्जत इससे कम है तो इसे माफ कर दो, अगर मेरी इज्जत बराबर है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, दामाद होने कारण इसका मुंह काला न किया जाए। उसे गधे पे बिठाया गया, उसका मुंह काला नहीं किया गया, पर यह तो पहले ही काला है। क्यों भाई, अब सुनाओ अखबार की खबर, कैसे चपड़ चपड़ अपनी सरकार के गुण गाते हो। यह काम समाप्त हुआ ही था कि गांव के दो भैंसों की मरने की खबर आई। इकट्ठे होकर सभी विचार करने लगे, पूजा पूरी होने नहीं दी और बीमारी कैसे जाए। एक ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, साधु छोड़ो, डॉक्टर से टीके लगवाओ। यह तो पाखंडी साधु था, साधुओं को बदनाम करते हैं, प्रतापी साधु की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह साधु रात को सोता था, एक व्यक्ति ने बताया था, वह ऐसे बकवास मारता, जो साधु को लाए थे वह कहने लगे, वह तो दान की कनक से चेते सा के पैसे चुका गया था, गांव का दान गांव में रह गया तो फिर पुण्य कैसे लगता। चेते सा की तो अक्ल मारी गई थी, उसने गेहूं क्यों ली। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, यह चेतू मजहबी था। मेरी बिल्लो, हाय मेरी बिल्लो, कहकर वह रो रहा था, कह रहा था, मेरे हाथ से रोटी नहीं खाई, बाहर से चर के आई थी। सज्जन सिंह ने उसे बचाने की कोशिश की, उसे घी पिलाया गया, पर वह लुढ़क गई। चेतू कहता, अच्छी बिल्लो थी, मैं तो उसका एक बाल भी बांका नहीं होने देता। सभी लोगों ने चेतू को समझाया, भगवान की जो इच्छा है। सरपंच ने कहा, प्रतापी साध को बुलाया जाए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी महिमा अपरंपार है, उसने सच के लिए अपनी इंद्री काटी थी, उसे लाने के लिए जल्दी जल्दी भेजो, वरना फिर वो किसी दूसरे गांव ना चला जाए। सारे गांव के लोग प्रतापी साधु की प्रतीक्षा फिर कर रहे थे, वो कब आए और कब गांव के पशुओं का उद्धार करें। पर तेजू मजहबी को अब किसी के आने की आस नहीं थी, क्योंकि उसे अब किसी साधु की प्रतीक्षा नहीं थी, क्योंकि उसके भाग्य की डोर टूट चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाग्य की डोर, जिसे लिखा है नवतेज सिंह ने। यह कहानी पंजाबी में है, इसे हिंदी में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि गांव के लोग प्रतापी साधु का इंतजार कर रहे हैं। तेजू को साधु पर बहुत भरोसा है। गांव में पशुओं की सेहत बहुत खराब होती जा रही है। तेजू मजवी को बिल्लो अपने पशु से प्यार बहुत है, उसे अपना कर्जा भी उतारना है। साधु के आने पर पीपा बजाकर सबको बताया जाता है कि साधु आ गए हैं। लोगों में वहम का होना, मानसिकता, अंधविश्वास, जादू टोना पर विश्वास करना कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करें, भाग्य की डोर। सारा गांव प्रतापी साधु के इंतजार में था, कभी भी उनके गांव में अपने चरण डालता, जब भी आता तो पशुओं का टूना जादू करता तेजू मजबी की तो बुखार चढ़ा था, जैसे भाग्य की डोर उस साधु के हाथ में है। पीले रंग की एल गुड़िया सजाई गई है, कोई घुटने टेक कर अपना काम कर रहा था, कोई अपने धान के खेत से घास फूस निकाल रहा था, पर तेजू के पास तो केवल एक उसकी बिल्लो ही थी। गांव में हर दिन कुछ जानवर अपने कान ढीले छोड़ने लगे, वह खाना भी छोड़ देते, उनकी आंखों में गिद्ध भी आ जाती, फिर कुछ दिनों बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगती और उनकी सांस अटकने लगती। लोगों ने उन्हें बचाने के बहुत यत्न किए पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के कई जानवर मर गए थे, कुछ जानवर बीमार पड़े थे। यह बड़ा आघात था कि स्वस्थ और अच्छे जानवर इस तरह मर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या त्रासदी आ गई है। गांव के कुछ लोगों ने कहा, साधु को छोड़ो, इस बार ब्लॉक में दरखास्त दे के सभी पशुओं को टीके लगवा लेते हैं। पर बुजुर्ग लोगों ने यह सलाह नहीं मानी, टीके से कुछ नहीं संवरता। सरकारी कामों की सुस्ता चाल का तो पता ही है सबको, पहले सारे गांव से दस्तखत कराएंगे, फिर दरखास्त देख देख के घूमेंगे, कितने दिन दरखास्त दफ्तरों में चक्कर काटती रहेगी, फिर पिछले साल की तरह डंगर के डॉक्टर बताएंगे कि दवाएं तो है ही नहीं। आखिर जिन टीकों के लिए आवाज उठाई गई थी वो भी साधु की तो शरण में गए। बहुत ही प्रतापी और विख्यात साधु है, वह अब तो बहुत बुढ़ा हो गया है, पर जब वह जवान था तो बताते हैं कि एक बार उसके डेरे पर एक स्त्री आई थी तो उसे लोगों ने बदनाम किया था। साधु ने जब यह अनहोनी सुनी तो उसने अपनी इंद्री काट ली। आज गांव के प्रमुख लोग उस साधु को लेने जा रहे हैं। पहले लोग अपने पशुओं को ऐसे ही चरने के लिए छोड़ देते थे, पर कुछ दिनों से लोगों से ऐसा नहीं हो रहा था। तेजू मंजूबी ने तो पहले भी कभी अपनी छोटी को गाली नहीं निकाली थी, उसने छोटी को धीरे धीरे बड़ा किया था। जब वह रोटी खाता तो वह चबूतरे पर आ जाती थी, उसने उसे बुरकियाँ टुकड़े टुकड़े रोटी खिलाकर बेटे जैसे पाला था। बिल्लो जहाँ भी होती उसे देखकर लौटने लग जाती, जैसे बिल्लो को पता था कि चेते साथ तेजू को अपना कर्ज उतारने के लिए तंग करता है। बिल्लो 3.5 वर्षों में ही गर्भ धारण करने लगी। चेते सा ने बहुत जोर लगाया कि तेजो उसे बिल्लो दे दे, चाहे वह सारे कर्जों को माफ करवा ले, पर तेजो तो जब उसके बच्चे होते तो वह जो ले 200-300 रुपया पेशगी ले लेता और एक किस्त चेते सा को दे देता। वह सोचता था कि ऐसे ही वह कर्जा उतार लेगा, पर अब गांव में किसी की कोई कट्टी मर गई और कोई इलाज नहीं था, तेजू को बहुत डर लगता था, पर उसे प्रतापी साधु पर बड़ा विश्वास भी था। साधु को लेने गए लोग वापस लौट आए, एक साधु उनके साथ आया, पर यह प्रतापी साधु नहीं था, उसका चेला था। प्रतापी साधु को कोई और दूसरे गांव में ले गया था। गांव में टल्ली खड़काकर सबको आगाह किया गया कि साधु आ गए हैं। भाइयों, जानवरों को स्वस्थ करने के लिए साधु आ गए हैं। पंचायत का हुक्म है कि रात को 10 बजे से लेकर सवेरे जब तक सारे पशुओं का रास्ता पार नहीं कर देते तब तक कोई व्यक्ति दिए नहीं जलाएगा, ना ही कोई आग जलाएगा, ना कोई कुएं से पानी निकालेगा, ना ही कोई नल चलाएगा, ना भैंस दोहेगा, गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा वह गांव का देनदार होगा, मुंह काला करके उसे गधे पर चढ़ाया जाएगा, 50 रुपये दंड भी लिया जाएगा। साधु ने चेते साह की दुकान से आधा गज कपड़ा, नारियल और सामग्री को ले लिए और चेते साह ने 2 किलो देसी घी का इंतजाम भी करा दिया। 25 रुपये का यह सामान था, पर चेते साह ने यह सारा सामान उधार में दिया था। सुबह साधु के पास बहुत सारी कनक जमा हो जाती थी। साधु ने एक कोरा नया घड़ा मंगवाया तो उसके नीचे एक छेद कर दिया, फिर एक बर्तन में जल और दूध डाला। साधु ने बर्तन और घड़ा पकड़ने के लिए 4-5 नौजवानों को लिया। साधु पवित्र जल और दूध बर्तन से निकाल कर घड़े में डाल देता। यह घड़ा गांव से बाहर करके उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा। इस रात को बाहर किसी को नहीं जाना था। ना बाहर से ही कोई अंदर आएगा। उसके अंदर जो भी भूत चुड़ैल थे उन्हें साधु ने अपने टूने टोटके से सुबह तक सबको भस्म कर देना था। इससे जो कोई व्यक्ति कानून उल्लंघन करेगा तो भूत प्रेत उसके साथ वापस आ जाएगा। साधु ने हवन करना शुरू किया। वह मंत्र पढ़ता और अग्नि में घी डालता। गांव के लोग उसके पास बैठकर जापजी साहब का पाठ लगातार करते रहे थे। पहलवान मर्दों की 5 टोलियां बनाई गई थी। सब ने हाथों में हवन सामग्री रखने वाला बर्तन दे दिया था। साधु ने उसमें कुछ अंगियारे उसमें डाल दिए थे और उसके कुछ सामग्री डाल दी थी। यह महकती सामग्री लेकर अलग अलग दिशा में वो चले गए थे। सबके दरवाजे पहले से ही खुले थे, कुछ बंद थे। उन्हें खुलाकर सभी को सामग्री देते और यह भी ध्यान रखते कि कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। सभी ने वसीरे चमार के ऊपर कड़ा पहरा रखने के लिए कहा था। जब धुनी देने वाले चमार के घर पहुंचे तो वह जागा ही हुआ था। उसके घर के दरवाजे भी खुले थे। वह बोला, भाइयों आप लोग जब भी आकर अपना सामान निकाल लो। उधर हवन और पाठ सारी रात चलता रहा और इधर टोलियां सारी रात गांवों के घर घर में घूमती रही। सुबह होने तक दोनों काम हो गए थे। सुबह सुबह साधु ने अरदास की और सारे गांव के पशुओं को भेजने का समय हो गया। साधु के सामने दूध वाले जल से भरा एक कड़ा पड़ा हुआ था। यहीं से सबू पशुओं को पार होना था। रस्सी बांधी गई थी, एक एक करके पशुओं को निकलना था, पर हर किसी को हड़बड़ थी। सब यही चाहते थे कि पहले उसका पशु निकल जाए और वह फ्री हो जाए, पर जल्दबाजी में किसी का पशु मिल नहीं रहा था। किसी की कट्टी गुम हो गई थी। हड़कंप मच गई, चारों तरफ धूल उड़ने लगी। हर परिवार का एक व्यक्ति कुछ सामान और गेहूं लेकर आया था। जब साधु के पास पशु पहुंचते तो वह उन पर जल छिड़कता, लोटे से जल देता और लाई हुई कनक एक ढेरी में डाल देते। यह गेहूं की ढेरी बढ़ती ही जा रही थी। जब सभी पशु चले गए तब कहीं जाकर घर में काम शुरू हुआ। आग जलाई गई। अभी तक तो साधु के पास ही मेला लगा हुआ था, बाकी सारा गांव सुनसान पड़ा था। साधु के पास करीब 30 मन गेहूं इकट्ठी हो गई। करीब 2 मन उसने चेते साहब को लौटा दी, जो सामान उसने चेते साहब से उधार दिया था। बाकी गेहूं ले जाने के लिए उसने रेड़ी मंगवाई और उसमें गेहूं डालकर वह अपने डेरे चला गया। एक टोली नामे महिर को पकड़ कर लाई। उस पर कानून उल्लंघन का दोष था। अभी सारे पशु पार नहीं हुए थे और उसने स्नान कर लिया था। साधु से पूछ लो। साधु तो चला गया, और साधु को क्या पता, यहाँ से तो हजारों लोग हजारों पशु पार हुए हैं, साधु कैसे पहचानेगा नामे को। कोई जवाब नहीं सूझा। एक गधा लाया गया और घर से तवे की स्याही लाई गई और गधे पर बिठाकर उसे घुमाया गया। इतने में एक और टोली आ गई, कहने लगी, गधे को यहीं रखो, एक और मुर्गा फंसा है। राम सुंदर ने रात में दिया जलाया था, दिया जा बिजली का लट्टू। राम सुंदर गांव का दामाद था और उसने यहाँ किराने की दुकान खोल रखी थी। वह बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा था, कांग्रेस पार्टी को मानने वाला था। उसे लोग सरकारी पिट्ठू समझते थे और उससे खार खाते थे। वह सफ़ेद खद्दर के कपड़े पहनकर जा रहा था तो टोली ने उसे पकड़ लिया। राम सुंदर शर्मिंदा होकर सबसे कह रहा था, मुझे गधे पर मत बिठाओ और जो भी दंड देना है दे दो। और वह कांपते हाथों से 10-10 के 5 नोट गिनने लगा। क्या तुम्हारे में कोई लाल लगे हैं, तुम्हें गधे पे क्यों ना चढ़ाया जाए। आस पास भी भीड़ इकट्ठी हो गई। जिनके पशु मर गए थे उन्हें बहुत रोष था। अंधेर आ गया, गांव का कोई रूल ही नहीं रहा, मर्यादा ही खत्म हो गई है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। ब्राह्मणों और महरियों ने अंत चुकी हुई है। हजारों रुपए की भैंसें मर गई हैं, पर इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना इनके कानों में कोई जूं रेखती है। मुठीर बाबा कभी गधों को कभी राम सुंदर को खुश खुश करता, भीड़ से ही कोई धक्का मार देता। 2 बुजुर्गों ने कहा, लड़को यह गांव का दामाद है, इसे माफ कर दो। अच्छा, गांव का दामाद? दामाद होगा अपने ससुर का, हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ साला लग सकता है, 50 की जगह 60 रुपए ले लो, पर मुझे गधे पर मत बिठाओ। तो नामा मनुष्य नहीं है क्या जिसे गधे पर चढ़ाया गया है, हमारे लिए सब बराबर है। कामरेड बोला, यह कभी कामरेड की पार्टी में था। एक बार किसान मोर्चा पार्टी से जेल भी हो आया था। फिर पाकिस्तान बनने के समय गांव के मुसलमानों का माल लूटने के कारण कॉमरेड से निकाल दिया गया, पर गांव वाले उसे कॉमरेड ही बुलाते थे। अच्छा, ऐसा करते हैं, नामे से ही पूछ लेते हैं। नामे को बुलाया गया। उसके मुंह से अभी पूरी काली कुतरी नहीं थी। लोग हंसने लगे। नामा गुस्से से बोला, भाइयों, अगर मेरी इज्जत इससे कम है तो इसे माफ़ कर दो, अगर मेरी इज्जत बराबर है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, दामाद होने कारण इसका मुंह काला न किया जाए। उसे गधे पे बिठाया गया, उसका मुंह काला नहीं किया गया, पर यह तो पहले ही काला है। क्यों भाई, अब सुनाओ अखबार की खबर, कैसे चपड़ चपड़ अपनी सरकार के गुण गाते हो। यह काम समाप्त हुआ ही था कि गांव के दो भैंसों की मरने की खबर आई। इकट्ठे होकर सभी विचार करने लगे, पूजा पूरी होने नहीं दी और बीमारी कैसे जाए। एक ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, साधु छोड़ो, डॉक्टर से टीके लगवाओ। यह तो पाखंडी साधु था, साधुओं को बदनाम करते हैं, प्रतापी साधु की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह साधु रात को सोता था, एक व्यक्ति ने बताया था, वह ऐसे बकवास मारता है। जो साधु को लाए थे वह कहने लगे, वह तो दान की कनक से चेते सा के पैसे चुका गया था, गाँव का दान गाँव में रह गया तो फिर पुण्य कैसे लगता। चेते सा की तो अक्ल मारी गई थी, उसने गेहूँ क्यों ली। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, यह चेतू मजहबी था। मेरी बिल्लो, हाय मेरी बिल्लो, कहकर वह रो रहा था। कह रहा था, मेरे हाथ से रोटी नहीं खाई, बाहर से चर के आई थी। सज्जन सिंह ने उसे बचाने की कोशिश की, उसे घी पिलाया गया, पर वह लुढ़क गई। चेतू कहता, अच्छी बिल्लो थी, मैं तो उसका एक बाल भी बांका नहीं होने देता। सभी लोगों ने चेतू को समझाया, भगवान की जो इच्छा है। सरपंच ने कहा, प्रतापी साध को बुलाया जाए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी महिमा अपरंपार है, उसने सच के लिए अपनी इंद्री काटी थी, उसे लाने के लिए जल्दी जल्दी भेजो, वरना फिर वो किसी दूसरे गांव ना चला जाए। सारे गांव के लोग प्रतापी साधु की प्रतीक्षा फिर कर रहे थे, वो कब आए और कब गांव के पशुओं का उद्धार करें। पर तेजू मजहबी को अब किसी के आने की आस नहीं थी, क्योंकि उसे अब किसी साधु की प्रतीक्षा नहीं थी, क्योंकि उसके भाग्य की डोर टूट चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी। मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है भाग्य की डोर, जिसे लिखा है नवतेज सिंह ने। यह कहानी पंजाबी में है, इसे हिंदी में सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस कहानी में हमें यह बताया गया है कि गांव के लोग प्रतापी साधु का इंतजार कर रहे हैं। तेजू को साधु पर बहुत भरोसा है। गांव में पशुओं की सेहत बहुत खराब होती जा रही है। तेजू मजहबी को बिल्लो अपने पशु से प्यार बहुत है, उसे अपना कर्जा भी उतारना है। साधु के आने पर पीपा बजाकर सबको बताया जाता है कि साधु आ गए हैं। लोगों में वहम का होना, मानसिकता, अंधविश्वास, जादू टोना पर विश्वास करना कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करें, भाग्य की डोर। सारा गांव प्रतापी साधु के इंतजार में था। कभी भी उनके गांव में अपने चरण डालता, जब भी आता तो पशुओं का टूना जादू करता। तेजू मजहबी की तो बुखार चढ़ा था, जैसे भाग्य की डोर उस साधु के हाथ में है। पीले रंग की एल गुड़िया सजाई गई है, कोई घुटने टेक कर अपना काम कर रहा था, कोई अपने धान के खेत से घास फूस निकाल रहा था, पर तेजू के पास तो केवल एक उसकी बिल्लो ही थी। गांव में हर दिन कुछ जानवर अपने कान ढीले छोड़ने लगे, वह खाना भी छोड़ देते, उनकी आंखों में गिद्ध भी आ जाती, फिर कुछ दिनों बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगती और उनकी सांस अटकने लगती। लोगों ने उन्हें बचाने के बहुत यत्न किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गांव के कई जानवर मर गए थे, कुछ जानवर बीमार पड़े थे। यह बड़ा आघात था कि स्वस्थ और अच्छे जानवर इस तरह मर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या त्रासदी आ गई है। गांव के कुछ लोगों ने कहा, साधु को छोड़ो, इस बार ब्लॉक में दरखास्त दे के सभी पशुओं को टीके लगवा लेते हैं। पर बुजुर्ग लोगों ने यह सलाह नहीं मानी। टीके से कुछ नहीं संवरता, सरकारी कामों की सुस्ता चाल का तो पता ही है सबको। पहले सारे गांव से दस्तखत कराएंगे, फिर दरखास्त देख दे के घूमेंगे। कितने दिन दरखास्त दफ्तरों में चक्कर काटती रहेगी, फिर पिछले साल की तरह डंगर के डॉक्टर बताएंगे कि दवाएं तो है ही नहीं। आखिर जिन टीकों के लिए आवाज उठाई गई थी वो भी साधु की तो शरण में गए। बहुत ही प्रतापी और विख्यात साधु है वह, अब तो बहुत बुढ़ा हो गया है, पर जब वह जवान था तो बताते हैं कि एक बार उसके डेरे पर एक स्त्री आई थी तो उसे लोगों ने बदनाम किया था। साधु ने जब यह अनहोनी सुनी तो उसने अपनी इंद्री काट ली। आज गांव के प्रमुख लोग उस साधु को लेने जा रहे हैं। पहले लोग अपने पशुओं को ऐसे ही चरने के लिए छोड़ देते थे, पर कुछ दिनों से लोगों से ऐसा नहीं हो रहा था। तेजू मंजूबी ने तो पहले भी कभी अपनी छोटी को गाली नहीं निकाली थी। उसने छोटी को धीरे धीरे बड़ा किया था। जब वह रोटी खाता तो वह चबूतरे पर आ जाती थी। उसने उसे बुरकियाँ, टुकड़े टुकड़े रोटी खिलाकर बेटे जैसे पाला था। बिल्लो जहाँ भी होती उसे देखकर लौटने लग जाती, जैसे बिल्लो को पता था कि चेते साथ तेजू को अपना कर्ज उतारने के लिए तंग करता है। बिल्लो 3.5 वर्षों में ही गर्भ धारण करने लगी। चेते साह ने बहुत जोर लगाया कि तेजो उसे बिल्लो दे दे, चाहे वह सारे कर्जों को माफ करवा ले। पर तेजो तो जब उसके बच्चे होते तो वह जो ले 200-300 रुपया पेशगी ले लेता और एक किस्त चेते साह को दे देता। वह सोचता था कि ऐसे ही वह कर्जा उतार लेगा। पर अब गांव में किसी की कोई कट्टी मर गई और कोई इलाज नहीं था, तेजू को बहुत डर लगता था। पर उसे प्रतापी साधु पर बड़ा विश्वास भी था। साधु को लेने गए लोग वापस लौट आए। एक साधु उनके साथ आया, पर यह प्रतापी साधु नहीं था, उसका चेला था। प्रतापी साधु को कोई और दूसरे गांव में ले गया था। गांव में टल्ली खड़काकर सबको आगाह किया गया कि साधु आ गए हैं। भाइयों, जानवरों को स्वस्थ करने के लिए साधु आ गए हैं। पंचायत का हुक्म है कि रात को 10 बजे से लेकर सवेरे जब तक सारे पशुओं का रास्ता पार नहीं कर देते तब तक कोई व्यक्ति दिए नहीं जलाएगा, ना ही कोई आग जलाएगा, ना कोई कुएं से पानी निकालेगा, ना ही कोई नल चलाएगा, ना भैंस दोहेगा, गांव से बाहर कोई नहीं जाएगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा वह गांव का देनदार होगा। मुंह काला करके उसे गधे पर चढ़ाया जाएगा, 50 रुपये दंड भी लिया जाएगा। साधु ने चेते साह की दुकान से आधा गज कपड़ा, नारियल और सामग्री को ले लिए और चेते साह ने 2 किलो देसी घी का इंतजाम भी करा दिया। 25 रुपये का यह सामान था, पर चेते साह ने यह सारा सामान उधार में दिया था। सुबह साधु के पास बहुत सारी कनक जमा हो जाती थी। साधु ने एक कोरा नया घड़ा मंगवाया तो उसके नीचे एक छेद कर दिया, फिर एक बर्तन में जल और दूध डाला। साधु ने बर्तन और घड़ा पकड़ने के लिए 4-5 नौजवानों को लिया। साधु पवित्र जल और दूध बर्तन से निकाल कर घड़े में डाल देता। यह घड़ा गांव से बाहर करके उन्होंने कोई मंत्र पढ़ा। इस रात को बाहर किसी को नहीं जाना था, ना बाहर से ही कोई अंदर आएगा। उसके अंदर जो भी भूत चुड़ैल थे उन्हें साधु ने अपने टूने टोटके से सुबह तक सबको भस्म कर देना था। इससे जो कोई व्यक्ति कानून उल्लंघन करेगा तो भूत प्रेत उसके साथ वापस आ जाएगा। साधु ने हवन करना शुरू किया। वह मंत्र पढ़ता और अग्नि में घी डालता। गांव के लोग उसके पास बैठकर जापची साहब का पाठ लगातार करते रहे थे। पहलवान मर्दों की 5 टोलियां बनाई गई थी। सब ने हाथों में हवन सामग्री रखने वाला बर्तन दे दिया था। साधु ने उसमें कुछ अंगियारे उसमें डाल दिए थे और उसके कुछ सामग्री डाल दी थी या महकती सामग्री लेकर अलग अलग दिशा में वो चले गए थे। सबके दरवाजे पहले से ही खुले थे, कुछ बंद थे। उन्हें खुलाकर सभी को सामग्री देते और यह भी ध्यान रखते कि कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। सभी ने वसीरे चमार के ऊपर कड़ा पहरा रखने के लिए कहा था। जब धुनी देने वाले चमार के घर पहुंचे तो वह जागा ही हुआ था। उसके घर के दरवाजे भी खुले थे। वह बोला, भाइयों आप लोग जब भी आकर अपना सामान निकाल लो। उधर हमन और पाठ सारी रात चलता रहा और इधर टोलियां सारी रात गांवों के घर घर में घूमती रहीं। सुबह होने तक दोनों काम हो गए थे। सुबह सुबह साधु ने अरदास की और सारे गांव के पशुओं को भेजने का समय हो गया। साधु के सामने दूध वाले जल से भरा एक कड़ा पड़ा हुआ था। यहीं से सबू पशुओं को पार होना था। रस्सी बांधी गई थी, एक एक करके पशुओं को निकलना था, पर हर किसी को हड़बड़ थी। सब यही चाहते थे कि पहले उसका पशु निकल जाए और वह फ्री हो जाए, पर जल्दबाजी में किसी का पशु मिल नहीं रहा था। किसी की कट्टी गुम हो गई थी। हड़कंप मच गई, चारों तरफ धूल उड़ने लगी। हर परिवार का एक व्यक्ति कुछ सामान और गेहूं लेकर आया था। जब साधु के पास पशु पहुंचते तो वह उन पर जल छिड़कता, लोटे से जल देता और लाई हुई कनक एक ढेरी में डाल देते। यह गेहूं की ढेरी बढ़ती ही जा रही थी। जब सभी पशु चले गए तब कहीं जाकर घर में काम शुरू हुआ। आग जलाई गई। अभी तक तो साधु के पास ही मेला लगा हुआ था, बाकी सारा गांव सुनसान पड़ा था। साधु के पास करीब 30 मन गेहूं इकट्ठी हो गई। करीब 2 मन उसने चेते साहब को लौटा दी, जो सामान उसने चेते साहब से उधार दिया था। बाकी गेहूं ले जाने के लिए उसने रेड़ी मंगवाई और उसमें गेहूं डालकर वह अपने डेरे चला गया। एक टोली नामे महिर को पकड़ कर लाई। उस पर कानून उल्लंघन का दोष था। अभी सारे पशु पार नहीं हुए थे और उसने स्नान कर लिया था। साधु से पूछ लो। साधु तो चला गया, और साधु को क्या पता, यहाँ से तो हजारों लोग हजारों पशु पार हुए हैं, साधु कैसे पहचानेगा नामे को। कोई जवाब नहीं सूझा। एक गधा लाया गया और घर से तवे की स्याही लाई गई और गधे पर बिठाकर उसे घुमाया गया। इतने में एक और टोली आ गई, कहने लगी, गधे को यहीं रखो, एक और मुर्गा फंसा है। राम सुंदर ने रात में दिया जलाया था, दिया जा बिजली का लट्टू। राम सुंदर गाँव का दामाद था और उसने यहाँ किराने की दुकान खोल रखी थी। वह बहुत शरीफ और पढ़ा लिखा था, कांग्रेस पार्टी को मानने वाला था। उसे लोग सरकारी पिट्ठू समझते थे और उससे खार खाते थे। वह सफ़ेद खद्दर के कपड़े पहनकर जा रहा था तो टोली ने उसे पकड़ लिया। राम सुंदर शर्मिंदा होकर सबसे कह रहा था, मुझे गधे पर मत बिठाओ और जो भी दंड देना है दे दो। और वह कांपते हाथों से 10-10 के 5 नोट गिनने लगा। क्या तुम्हारे में कोई लाल लगे हैं, तुम्हें गधे पे क्यों ना चढ़ाया जाए। आस पास भी भीड़ इकट्ठी हो गई। जिनके पशु मर गए थे उन्हें बहुत रोष था। अंधेर आ गया, गांव का कोई रूल ही नहीं रहा, मर्यादा ही खत्म हो गई है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। ब्राह्मणों और महरियों ने अंत चुकी हुई है। हजारों रुपए की भैंसें मर गई हैं, पर इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना इनके कानों में कोई जू रेखती है। मुठीर बाबा कभी गधों को कभी राम सुंदर को खुश खुश करता, भीड़ से ही कोई धक्का मार देता। 2 बुजुर्गों ने कहा, लड़कों यह गांव का दामाद है, इसे माफ कर दो। अच्छा, गांव का दामाद? दामाद होगा अपने ससुर का, हमारा कुछ नहीं लगता। हाँ साला लग सकता है, 50 की जगह 60 रुपये ले लो, पर मुझे गधे पर मत बिठाओ। तो नामा मनुष्य नहीं है क्या जिसे गधे पर चढ़ाया गया है, हमारे लिए सब बराबर है। कामरेड बोला, यह कभी कामरेड की पार्टी में था, एक बार किसान मोर्चा पार्टी से जेल भी हुआया था, फिर पाकिस्तान बनने के समय गांव के मुसलमानों का माल लूटने के कारण कामरेड से निकाल दिया गया, पर गांव वाले उसे कामरेड ही बुलाते थे। अच्छा ऐसा करते हैं, नामे से ही पूछ लेते हैं। नामे को बुलाया गया, उसके मुंह से अभी पूरी काली कुतरी नहीं थी। लोग हंसने लगे। नामा गुस्से से बोला, भाइयों अगर मेरी इज्जत इससे कम है तो इसे माफ़ कर दो, अगर मेरी इज्जत बराबर है तो उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, दामाद हो रहे कारण इसका मुंह काला ना किया जाए। उसे गधे पे बिठाया गया, उसका मुंह काला नहीं किया गया, पर यह तो पहले ही काला है। क्यों भाई, अब सुनाओ अखबार की खबर, कैसे चपड़ चपड़ अपनी सरकार के गुण गाते हो। यह काम समाप्त हुआ ही था कि गांव के दो भैंसों की मरने की खबर आई। इकट्ठे होकर सभी विचार करने लगे, पूजा पूरी होने नहीं दी और बीमारी कैसे जाए। एक ने कहा, मैंने पहले ही कहा था साधु छोड़ो, डॉक्टर से टीके लगवाओ। यह तो पाखंडी साधु था, साधुओं को बदनाम करते हैं, प्रतापी साधु की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यह साधु रात को सोता था, एक व्यक्ति ने बताया था, वह ऐसे बकवास मारता है। जो साधु को लाए थे वह कहने लगे, वह तो दान की कनक से चेते सा के पैसे चुका गया था, गांव का दान गांव में रह गया तो फिर पुण्य कैसे लगता। चेते सा की तो अक्ल मारी गई थी, उसने गेहूँ क्यों ली। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, यह चेतू मजहबी था, मेरी बिल्लो, हाय मेरी बिल्लो, कहकर वह रो रहा था। कह रहा था, मेरे हाथ से रोटी नहीं खाई, बाहर से चर के आई थी। छज्जन सिंह ने उसे बचाने की कोशिश की, उसे घी पिलाया गया पर वह लुढ़क गई। चेतू कहता, अच्छी बिल्लो थी, मैं तो उसका एक बाल भी बांका नहीं होने देता। सभी लोगों ने चेतू को समझाया, भगवान की जो इच्छा है। सरपंच ने कहा, प्रतापी साध को बुलाया जाए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, उसकी महिमा अपरंपार है, उसने सच के लिए अपनी इंद्री काटी थी, उसे लाने के लिए जल्दी जल्दी भेजो, वरना फिर वो किसी दूसरे गांव ना चला जाए। सारे गांव के लोग प्रतापी साधु की प्रतीक्षा फिर कर रहे थे, वो कब आए और कब गांव के पशुओं का उद्धार करे। पर तेजू मजहबी को अब किसी के आने की आस नहीं थी, क्योंकि उसे अब किसी साधु की प्रतीक्षा नहीं थी, क्योंकि उसके भाग्य की डोर टूट चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।